आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डर लायन मुख्य अतिथि होंगे। 26 जनवरी के दिन ही यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। इस समझौते को लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि यह मदर ऑफ ऑल डील्स होगा, जो ईयू और भारत दोनों के लिए कई क्षेत्रों में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की विवादास्पद एक तरफा नीतियों के चलते, जिसमें उन्होंने डेनमार्क अमेरिका को न सौंपे जाने के एवज में कई मित्र यूरोपीय देशों पर भी 10% टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली है, भारत और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के बीच होने जा रहे इस समझौते को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के विपरीत भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर सकारात्मक रवैया अपनाते दिख रहे हैं। शनिवार को उन्होंने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के साथ ट्रेड, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, एनर्जी और मजबूत सप्लाई चेन जैसे अहम सेक्टरों में मजबूत गति बना रहा है, जो दोनों देशों की पार्टनरशिप की बढ़ती गहराई को दिखाता है। वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इस बार की गणतंत्र दिवस का थीम भी वंदे मातरम होगा। चित्रकार श्री तेजेंद्र कुमार मित्रा द्वारा 1923 में बनाई गई पेंटिंग्स की एक सीरीज, जिसमें वंदे मातरम के छंदों को दिखाया गया है और जो वंदे मातरम एल्बम के रूप में प्रकाशित हुई थी, को कर्तव्य पथ पर व्यू कटर के माध्यम से डिस्प्ले किया जाएगा। फ्लाईपास्ट में राफेल, SU-30, अपाचे जैसे 29 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। स्वदेश निर्मित तेजस लड़ाकू विमान को इस बार परेड में नहीं रखा गया है। पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस से सत्ता लेना प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा का एक बड़ा उद्देश्य बन चुका है। चूंकि वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल से ही थे, इसलिए वंदे मातरम को गणतंत्र दिवस का मुख्य थीम बनाना राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में भी अपने चुनावी दौरे शुरू कर चुके हैं। शनिवार को मालदा में उन्होंने मालदा से हावड़ा और कामाख्या मंदिर गुवाहाटी के बीच पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर धारदार हमले किए। इसके बाद वे असम गए, जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल की भांति घुसपैठिया कार्ड खेला।
साथियों, कांग्रेस असम के लोगों को अपना नहीं मानती है। कांग्रेस के लोगों को विदेशी घुसपैठिए ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो यहां आकर कांग्रेस का कट्टर वोट बैंक बन जाते हैं। इसलिए कांग्रेस के राज में विदेशी घुसपैठिए आते रहे, असम की लाखों बीघा जमीन पर कब्जा करते रहे और कांग्रेस सरकार उनकी मदद करती रही। मुझे खुशी है कि आज हेमंता जी की सरकार असम के लोगों के हक की लाखों बीघा जमीन को घुसपैठियों से मुक्त करवा रही है।
तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस दोनों ही भाजपा पर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में घरेलू मतदाताओं का नाम काटने और बाहरी लोगों का नाम जोड़ने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में आकर ईरान के चाबहार बंदरगाह का निर्माण छोड़ देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के चलते मोदी सरकार पर चाबहार प्रोजेक्ट को छोड़ देश की जनता के $120 मिलियन यानी करीब 1100 करोड़ रुपए बर्बाद करने का आरोप लगाया।
खबरों के मुताबिक अमेरिका की धमकी के चलते भारत ईरान के साथ बनने वाले चाबहार पोर्ट योजना से बाहर हो गया है। सारे सरकारी डायरेक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया है। इस पर ज्यादा चर्चा करने से पहले एक बार समझते हैं कि चाबहार पोर्ट के फायदे क्या थे। सबसे पहले तो भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों तक सीधे पहुंच सकता था। ये पाकिस्तान और चीन का जो अलायंस बन रहा है उसके खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक कदम होता और चाबहार भविष्य में एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए एक सुरक्षित, एक सेफ मार्ग प्रदान कर सकता था। इसमें भारत ने $120 मिलियन का निवेश किया है, करीब 1100 करोड़ रुपए। जब चाबहार पोर्ट का अग्रीमेंट हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा कदम है, उन्होंने इसे अपनी बड़ी सफलता बताया था। तो अब कुछ सवाल तो उठेंगे ही, यकाएक ऐसा क्या बदला कि हम प्रोजेक्ट से ही बाहर हो गए? ये कौन सा खौफ है अमेरिका का?
कांग्रेस के इस आरोप पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सफाई देते हुए कहा कि ईरान के चाबहार बंदरगाह से जुड़ी योजनाएं जारी हैं, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका से बातचीत कर रहा है।
जैसा कि आपको पता है 28 अक्टूबर 2025 को यूएस के ट्रेजरी विभाग ने एक चिट्ठी जारी की थी हम लोगों को। उस चिट्ठी में उसमें अनकंडीशनल सैंक्शंस वेवर की बारे में जानकारी थी और ये जो अनकंडीशनल वेवर है, जो सैंक्शन वेवर हमको मिला है, आपको पता है जैसे कि वो 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। हम इस व्यवस्था पर काम करने के लिए यूएस पक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं।
इसी के साथ आपको बता दें कि ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों और अमेरिका द्वारा हमले की धमकी से बचकर कई भारतीय नागरिक दिल्ली हवाई अड्डे पहुंच रहे हैं। इनमें से अधिकतर विद्यार्थी हैं और बहुत से अपने निजी खर्च पर वापस आए हैं। कई यात्री अपनी आप बीती सुनाते हुए रोते हुए भी देखे गए। ईरान में कुल भारतीयों की संख्या 9000 के आसपास है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में भाजपा ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए कुल 29 नगर निगमों में से 17 पर कब्जा कर लिया है। वहीं उसके नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 8 निगमों में जीत हासिल की। इस तरह भाजपा गठबंधन ने कुल 25 नगर निगम जीते हैं। 227 सदस्यों वाली बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी BMC में भी भाजपा शिवसेना शिंदे के गठबंधन ने शिवसेना उद्धव का 3 दशक पुराना दबदबा खत्म कर दिया है। यहां भाजपा 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जबकि शिवसेना शिंदे ने 29 सीटों पर कब्जा किया। शिवसेना उद्धव को 65 और MNS को 6 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के गठबंधन को 24 सीटें मिली। महाराष्ट्र में पराजित दलों ने एक बार फिर भाजपा गठबंधन पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया है। उनके तर्क स्याही की जगह जल्दी मिट जाने वाले मार्कर पेन का इस्तेमाल करने और वोट गिनती के समय बैकअप के तौर पर प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट मशीनों को लगाने के फैसले को लेकर है। इन दलों का कहना है कि ये निर्णय चुनाव आयोग ने उन्हें बिना बताए लिया, जो सरासर गलत है। और अब समाचार खेल जगत से। न्यूजीलैंड ने तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 41 रन से जीतकर भारत को 3 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से हरा दिया है। इंदौर में खेले गए इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। खराब शुरुआत के बावजूद न्यूजीलैंड डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के शतकों की बदौलत 8 विकेट पर 337 रन का बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। शुरुआत में ही 13वें ओवर में 71 रन पर 4 विकेट खोने के बाद विराट कोहली और नीतीश कुमार रेड्डी भारत को मैच में वापस ले आए। रेड्डी के 53 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा भी जल्द ही आउट हो गए, मगर हर्षित राणा ने कोहली के साथ तेज गति से रन बना भारत को एक बार फिर मैच में वापिस लाने का प्रयास किया, मगर राणा के 52 रन पर आउट होने से भारत फिर से दबाव में आ गया। बढ़ते आस्किंग रेट को कम करने की कोशिश में कोहली भी 108 गेंदों में 124 रन बनाकर आउट हो गए और भारत की पूरी पारी 46 ओवर में मात्र 296 रन पर सिमट गई। डेरिल मिचेल को उनकी बेहतरीन 137 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
Thank you.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।